क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले किरण बन उतरा नयन में, साधना का हो बसेरा गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया।
ओम शांति। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पर चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अशकों को दामन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे, लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। सृष्टि एक समंदर है प्रकंपनों का, जो कुछ इसमें हो रहा है एक घटना दूसरी घटना को प्रभावित कर रही है। इस सृष्टि नाटक में कोई भी घटना आइसोलेटेड अलग थलग नहीं हो रही है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इंटरकनेक्टेड इंटररिलेटेड। सारी घटनाएं एक दूसरे से, केवल इतना ही नहीं, वर्तमान अतीत से जुड़ा है, भविष्य वर्तमान से जुड़ा है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, दूसरी आत्मा है, एक मन दूसरे मन से जुड़ा हुआ है। लोगों ने क्यों परिकल्पना की थी कभी, द यूनिवर्सल माइंड, एक ही मन है, बहुत सारे मन नहीं, और इन सब मन के जुड़ाव से ये सृष्टि चल रही। तो एक मन में यदि हल होती है तो उसका प्रभाव, यदि एक प्रेम का बीज अंकुरित होगा तो उसका प्रभाव भी दूसरे मन पर पड़ेगा। अगर मन में घृणा उत्पन्न होती है तो उसका प्रभाव भी दूसरे मन पर पड़ेगा, और यदि कईयों के मन में प्रेम अंकुरित होता है तो वो प्रेम विस्तीर्ण होगा, वो प्रेम फैले विकीर्ण होगा। स्टोरी नंबर वन। साई बाबा के पास आया और कहने लगा, बाबा जब मैं मधुबन में आता हूँ योग बहुत अच्छा लगता है, मैं सेंटर पर जाता हूँ तो मेरी स्थिति बहुत अच्छी रहती है, पर जैसे ही अपने कर्म क्षेत्र पर जाता हूँ और जैसे ही संसार के अज्ञानी अनजान आत्माओं के संपर्क में आता हूँ मेरी स्थिति हिलने लगती। जब तक आध्यात्मिक वातावरण में हूँ तब तक ठीक हूँ, जैसे ही ऑफिस गया, जैसे ही संसार के वातावरण में प्रवेश किया सब हिलने लगता है, फिर कुछ भी नहीं रहता है, न याद रहती है, कितना अभ्यास करता हूँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ आत्मा हूँ, आत्मा रहती है ना परमात्मा, कुछ नहीं रहता, क्या करूँ। बाबा ने कहा एक काम करो, अगरबत्ती का पैकेट है तुम्हारे पास तो उसको अपनी जेब में डाल दो, और जब काम पर जाओ तो अगरबत्ती का पैकेट लेके जाना ऑफिस में, और जैसे ही तुम्हें लगे कि बाहर का वातावरण और बाहर के लोग तुम पर हावी हो रहे, एक अगरबत्ती निकालना, उसको जलाना और सामने रख देना और उससे बातें करना कि ये अगरबत्ती तुम हो रचना, मनुष्य ने तुमको रचा है, अगरबत्ती तुम तो कभी नहीं कहती कि क्या करूं इतनी दुर्गंध है कैसे फैलाऊं खुशबू, मैं इतनी दुबली पतली और दुर्गंध इतना मोटा ताजा। बाबा ने क्या कहा, तुम बाबा ने कहा तुमको अगरबत्ती इतनी भी अक्ल नहीं है, जो तुम्हारी रचना है अगर अगरबत्ती ये काम कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। संसार का वातावरण चाहे कितना भी निगेटिव नकारात्मक घृणा से और नफरत से और विकारों से क्यों ना भरा हो, ये वो प्रेम तुम में है। यदि वो आत्मिक स्थिति में तुम स्थित हो तो तुम भी इस अगरबत्ती जैसे खुशबू फैलाओगे। मन खुशबू देता है। मधुबन अर्थात कोई इमारत नहीं, मधुबन अर्थात कोई स्थित कोई स्थान का नाम मधुबन नहीं है, मधुबन कोई एक भौगोलिक व्यवस्था नहीं है, ये मधुबन यहाँ से वहाँ तक, ऐसे मधुबन कहते हैं। मधुबन की ज्योग्राफिकल डेफिनेशन नहीं है मात्र, जहाँ मुरली सुनाई जाती है वो मधुबन, जहाँ भगवान अवतरित होते हैं वो मधुबन, जहाँ प्रभु प्रेम है वो मधुबन, जिस मन में मुरली की गूंज होती है वो मधुबन, जिस मन में प्रभु प्रेम अवतरित हुआ है परमात्मा अवतरित हुआ है वो मन मधुबन है। हर स्थान स्थान अर्थात मधुबन अर्थात वो हर आत्मा जहाँ पर प्रभु प्रेम है, प्रभु संदेश प्रभु वाणी गूंज रही है, जहाँ पवित्रता की खुशबू है वो मधुबन, जहाँ परमात्मा याद है वो मधुबन, चलते फिरते मधुबन बन जाओ, मोबाइल मधुबन। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगरबत्ती बनो और बदबू का क्या करेंगे, कंप्लेंट, बदबू का क्या करेंगे, कहने में कितना जोश है, बदबू को ओवर पावर कर देंगे चाहे बदबू कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, खुशबू से शक्तिशाली नहीं संसार का वातावरण वायुमंडल, विरोधी आत्माएं, निगेटिविटी चाहे ऊपर से दिख रही है बहुत शक्तिशाली है, परंतु पॉजिटिविटी से शक्तिशाली और कुछ भी नहीं, केवल हमें विश्वास कम है अपनी पॉजिटिविटी में। इसलिए घर के वो लोग जो ज्ञान में नहीं चलते, घर के वो लोग जो इस ज्ञान को नहीं मानते, या वो लोग जिनके स्वभाव संस्कार बहुत कड़े हैं और निगेटिव है, उनके सामने जाते ही हम क्या हो जाते, शक्तिहीन, उनकी निगेटिविटी हमसे ज़्यादा पावरफुल है, क्यों, क्योंकि हमारा डोज और हमारा स्टॉक बहुत कम है। तो क्या करो, इसको बढ़ाओ, यही अध्यात्म है। अध्यात्म अर्थात आत्मिक शक्तियों से, परमात्मा शक्तियों से आत्मा को भरना, स्पिरिचुअल पावर्स। तो कंप्लेंट डिसकंप्लेंट नहीं करनी है दुर्गंध के बारे में, क्या करना है, अपना काम जारी रखना है, फैलानी खुशबू। और क्या सीखेंगे इससे, पैकेट में अगरबत्ती का लेके जाओ, जब भी भूल जाओ अगरबत्ती जलाओ और उसको देखो, ये देखो क्या कर रही है, और है कितनी दुबली पतली लकड़ी पहलवान, और हम देखो रचना ये काम कर रही है, हम तो रचता है. सो कंप्लेंट बिजनेस स्टॉप. फिर से दुकान खोलनी नहीं है कंप्लेंट की. कंप्लेंट की दुकान आज से बंद. कोई कोई फिर भी खोलते 10 मिनट के लिए थोड़ी कमाई हो जाए. 10 मिनट ही क्यों ना, आधा शटर खोल खोल के रखता है, कोई आ ही जाए. स्टोरी नंबर टू. दादी हमेशा कहती है, जब हम छोटे थे तो बाबा ने हमको ऐसे पाला वैसे पाला. हम जहां से आई थी वो घर भी इतने अमीर घर से हम आई थी कि हमने हमारे एक एक काम के लिए एक एक नौकर रहता था. और जब यज्ञ में आए, जो हमने इतिहास में देखा, आज का 30 दिन कौन सा है, 78, तो बहुत ज्यादा विस्तार से सब कुछ हमने देखा है कि कैसे वो सब छोटे छोटे बच्चे कन्याएं आई और सब कैसे फिर कराची पहुंचे और फिर कैसे सब ने सब काम किए. तो एक बार गुलजार दादी कहती है कि बाबा ने हम छोटी बच्चियों को कहा कि बच्ची आ जाओ, तुम अपना जूता खुद सिलाओ. तो हमने बाबा से कहा, जूता सिलाई और वो चमड़े का, वो कितना जाड़ा होता है और हमारे हाथ बहुत कोमल है. बाबा ये काम तो भाइयों का है, बहनों का काम थोड़ी ना है, ये हम थोड़ी ना करेंगे. हम कोमल है, हमारे हाथ बहुत कोमल है, हम ये काम नहीं कर सकते. हमारे सुई हमारे उंगली को लग गई तो हमको नुकसान हो सकता है. तो बाबा ने कहा, अच्छा ये बताओ तुमने जन्म कितने लिए है. 84. क्या सारे 84 जन्मों में तुम स्त्री थी या पुरुष थी, नारी थी या नर थी. तो सबने कहा, हम नर भी थे और नारी भी थी. अर्थात आत्मा में दोनों ही प्रकार के संस्कार है, स्त्री के भी और पुरुष के भी. इसके लिए जो भी कार्य करो ये समझो मैं चतुर्भुज हूं. कौन हूं? चतुर्भुज हूं. नारी समझोगे तो नारीपन आएगा और कोमलता आएगी. ऐसा कोई कार्य नहीं जो मैं नहीं कर सकती कर सकता. नारी के भी संस्कार है, पुरुष के भी संस्कार. मैं कौन हूं? चतुर्भुज. या दो हाथ लगा लेना है, काम भी थोड़ा फास्ट होगा. चार चार हाथ से, दो हाथ से कुछ और दो हाथ से कुछ. तो क्या समझना है? मैं चतुर्भुज हूं. दादी कहती है, इस तरह से बाबा ने धीरे धीरे हमको ट्रेनिंग दी और हमारे अंदर जो कोमलता, जो नारीपन, जो अबलापन का भाव था, नारित्व को नष्ट कर दिया. वो जो पुरुषत्व था वो सबको हटा के एक भाव में स्थित किया, मैं विष्णु हूं. दोनों संस्कार मुझ में. केवल नारी समझोगे तो कोमलता आएगी, पुरुष समझोगे तो अहंकार आएगा, पुरुषत्व पौरुष का अहंकार. और नारी समझोगे तो मैं अपना नारी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कैसे करूं, मैं बेचारी, असहाय, कमसीन, दुखियारी. वुमन थाई नेम इज फ्रेलिटी. शेक्सपियर अपनी कविता में कहता है, स्त्री तेरा नाम है कमजोरी. इस सिद्धांत को उखाड़ के फेंक देना. द्वारम किमेकम नरकस्य नारी. शंकराचार्य ने कहा है, नरक का द्वार यदि कुछ है और कोई है तो नारी. और भगवान क्या कहता है? स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है. और भगवान क्या कहता है? जिसको सारी दुनिया ने ठोकर लगाई उसको आकर बाप ने क्या कर दिया? ठाकुर बना दिया. तो नारी नहीं समझना है, मैं शिव शक्ति समझ. मैं चतुर्भुज हूं, असंभव कुछ भी नहीं है मेरे लिए. और स्त्री होने का तो कारण ही नहीं देना है कोई कार्य के लिए. ये मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहन हूं, स्त्री हूं. और पुरुषों के लिए क्या फिर? ये बहनों का काम है, हम नहीं करेंगे. कल भी हमने देखा था, सारे कार्य, सारी सेवाएं यज्ञ की है, सारी सेवाएं बाबा की है. कोई भी कार्य छोटा नहीं है. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, चतुर्भुज हूं, शिव शक्ति हूं, ऑलराउंडर हूं, फरिश्ता हूं. स्टोरी नंबर थ्री. लक्ष्मण भाई थे, अभी भी शरीर छोड़ा 2017 में कुरुक्षेत्र. वो टीचर थे तो बाबा को उन्होंने एक बार खत लिख के बताया, बाबा अभी मेरी ट्रांसफर हो गई है तो जहां मैं रहता हूं वहां पे खाना ठंडा खाना पड़ता है, खाना गर्म नहीं मिलता. बाबा ने उत्तर लिखा, कोई बात नहीं बच्चे, पेट में जाके खाना ठंडा ही हो जाता है वैसे भी। क्या कहा? पेट में जाके खाना ठंडा ही हो जाता है। हीट इज द एनिमी ऑफ न्यूट्रिशन। हीट क्या है? न्यूट्रिशन का दुश्मन। तो भाई जी ने लिखा, इसका मेरे पर बड़ा तुरंत गहरा प्रभाव पड़ गया। मैं तो सोचा ही नहीं था बाबा ऐसा भी बोल सकते। मॉरल ऑफ द स्टोरी, संतुष्टता। और मॉरल ऑफ द स्टोरी, एडजस्टमेंट। और मॉरल ऑफ द स्टोरी, कंप्लेंट नहीं करना है, जैसे वैसे खा ले। और मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक्सेप्टेंस। जैसे ही किसी चीज को पकाया जाता है, सत्व तत्व नष्ट हो जाते हैं, उसके प्रोटीन्स, उसके एंजाइम्स, उसके विटामिन्स अपना स्वरूप बदल देते हैं। एक दूसरा, जैसे ही किसी चीज को पकाया जाता है, उसमें एडिक्शन निर्माण हो जाता है, फिर वही चाहिए। जैसे ही किसी चीज को पकाया जाता है, ओवर ईटिंग होता है हमेशा। जो कच्चा है उसको आप ओवर ईटिंग नहीं कर सकते। जैसे ही किसी चीज को पकाया जाता है, पॉइंट नंबर फोर, तृप्ति नहीं होती है, कितना भी खाओ तो तृप्ति नहीं होती है। पॉइंट नंबर फाइव, एसिडिक बन जाता है। हमारा शरीर क्षार तत्व से बना है, अम्ल तत्व से नहीं, एसिडिक नहीं। इसके लिए अल्कलाइन डाइट। पॉइंट नंबर सिक्स, जो भी पकाया जाता है म्यूकस फॉर्मिंग हो जाता है। हमारे शरीर को चाहिए म्यूकस लेस डाइट। जो जैसा है, जैसा प्रकृति ने दिया है, प्राकृतिक। जैसे ही चीज पकाई जाती है, उससे जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, और जो नेचुरल रूप में उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, वो हमेशा ज्यादा होती है। जैसे ही किसी चीज को पकाया जाता है और खाया जाता है, शरीर में एक सुस्ती, प्रमाद, निद्रा और आलस और जड़ता आ जाती है। और जैसे ही जो नेचुरल रूप में खाया जाता है, अपक्व आहार, रॉ डाइट, उसमें शरीर में ऊर्जा दौड़ने लगती है। जो ही चीज पकाई जाती है, वो खाने के बाद नींद आने चालू हो जाती है। जैसे ही रॉ पर रहते हैं, ऊर्जा लेवल बढ़ जाती है। पका हुआ भोजन बनाने के लिए बर्तनों की ज्यादा आवश्यकता है, गैस की आवश्यकता है, कितनी सारी चीजों की आवश्यकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फायरलेस किचन। जहां फायरलेस किचन है, वहां पे दवाइयां घर में नहीं होगी। जहां आग जलती है, वहां दवाइयां भी होती है, बीमारियां होती है। जितनी बीमारियां संसार में है, मुख्य एक कारण है पका हुआ आहार, कुक्ड फूड। ब्रह्मचर्य की साधना में यदि कोई पूछे एक ही उपाय बताओ, बस सब कुछ कर लिया, सारे सामान ले लिए, लिख लिए, पढ़ लिया, मुड़ लिया, वो सब इंटेलेक्चुअल गिमिक्स है, बुद्धिविलास। बुद्धि ने तो समझ लिया ब्रह्मचर्य होना चाहिए, पर हो नहीं रहा है। वो होगा तब जब आहार परिवर्तन होगा। जैसे ही अपक्व पर आते हैं, अपने आप शक्ति जमा होने लगती है। उसके बाद में फायर इंजुरीज कितनी होती है। घर देखिए कैसे काले काले रहते हैं, किचन बर्तनों में कैसे काले काले हो जाते हैं। रॉ में झंझट ही खत्म, गैस की बचत, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पोल्यूशन, एक एक घर से धुआं उठ रहा है गैस का, काम कम हो जाएगा, क्लीनिंग का काम कम हो जाएगा, धुलाई सफाई का, प्रकृति से दुआएं मिलेगी, टाइम बचत होगी। और वो जो बर्तनों में काला काला और ग्रीस और ऑयली कितना घिसना पड़ता है, मेड को रोज सुनना पड़ता है, और फिर ये टेंशन रहती है आज क्या बनाओ, कल क्या बनाओ, आज क्या बनाओ, कल क्या बनाओ, दोपहर को क्या बनाओ, सुबह क्या बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ऐसा बनाओ, कल तो वो बनाया था, आज वो नहीं। उसमें वैरायटी चाहिए। रॉ में वैरायटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रॉ को ओवर ईट कर ही नहीं सकते। कितना अंकुरित खाओगे, दो कटोरी, तीन कटोरी, हाँ पनीर चार कटोरी भी कोई खा ले, फिर भी कहेगा थोड़ा सा होगा तो मैं कल के लिए ले जाता हूँ, फ्रिज में रख देंगे, दो दिन खराब नहीं होता है ये, आराम से रखो, तीन दिन भी खराब नहीं होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। इसलिए योगी धीरे 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 नॉन वेजिटेरियन से शिफ्ट हो जाता है वेजिटेरियन पर, और फिर धीरे धीरे वेजिटेरियन से शिफ्ट होता है वीगन पर। दूध और दूध से जो कुछ बना हुआ है, सब कुछ म्यूकस फॉर्मिंग है। पराई माँ का दूध हमारा दूध नहीं है, ना ही हमारा आहार है। और वीगन से धीरे धीरे शिफ्ट होता है रॉ पर। ये यात्रा है, ये संगम युग है, इसमें टाइम लगता है थोड़ा। कुक्ड से अनकुक्ड तक पहुंचने के लिए। फिर धीरे धीरे उसको समझ में आता है ग्रेन सारा अनाज ये पक्षियों का आहार है हमारा नहीं, भारी करता है सिस्टम को, सारे रोगों को जन्म देता है। योगी धीरे 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 आगे 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 आगे, फिर फ्रूट्स, फिर रॉ फ्रूट्स वेजिटेबल्स, आगे बहुत सारी जर्नी है, उसको छोड़ देते। आज गुरुवार है, थोड़ा रहम करते हैं, ठीक है। जिलेबी इंतजार कर रही है। अव्यक्तवाणी 30 जनवरी 1985 सतयुग। यह जल इत्र फुलेन का कार्य करेंगे, जैसे जड़ी बूटियों के कारण गंगा जल अभी भी और जल से पवित्र है, ऐसे खुशबूदार जड़ी बूटियां होने के कारण जल में नेचुरल खुशबू होती है। जैसे यहाँ दूध शक्ति देता है, वहाँ का जल ही शक्तिशाली होगा, स्वच्छ होगा, इसलिए कहते हैं दूध की नदियां बहती है। सब अभी से खुश हो गए ना, ऐसे ही यह पृथ्वी ऐसा श्रेष्ठ फल देगी जो जिस भी भिन्न भिन्न टेस्ट के चाहते हो उस टेस्ट का फल आपको मिलेगा। यह नमक नहीं होगा, चीनी भी नहीं होगी। जैसे अभी खटाई के लिए है, यह टमाटर है तो बना बनाया है ना, खटाई आ जाती है, ऐसे ही जो आपको टेस्ट चाहिए उसके फल वहां होंगे। रस डालो और टेस्ट आ जाएगा। अव्यक्तवाणी 23 अक्टूबर 1975। जब शरीर को चलाना आ जाएगा तब राज्य चलाना आ जाएगा। बॉडी मैनेजमेंट किंगडम मैनेजमेंट है। जो अभी शरीर से बीमार बीमार बीमार, ये दर्द वो दर्द, ये दवाई वो दवाई, राज्य को कैसे चलाओगे, शरीर को ही नहीं चला पा रहे हो तो। सबसे ज्यादा सेवा कौन सा तत्व करेगा? सूर्य। अव्यक्त मुरली 24 अक्टूबर 1981। सबसे ज्यादा सेवा कौन सा तत्व करेगा? सूर्य। सूर्य की किरणें भिन्न भिन्न प्रकार की कमाल दिखाएगी। यह सब आपके लिए तैयारी हो रही है। गैस जलाने की, कोयला जलाने की, लकड़ी जलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सबसे छूट जाएंगे। अच्छा, बहुत रंगत देखते जाएंगे, वह मेहनत करेंगे और आप फल खाएंगे। नेचर के सुख लेने के लिए भी अपनी ओरिजिनल नेचर को बनाओ। अव्यक्त बाप दादा। स्टोरी नंबर, निर्भय भाई साहब ने एक अनुभव लिखा है कि मैं नेवी में था, 63 में तो ज्ञान में आए थे, 59 में ज्ञान में आए थे, वो 63 की बात लिखी है कि मुझे नेवी छोड़नी थी पर कैसे छोड़ू जॉब। तो मुरलियों में एक बार आया कि अगर 8 घंटा योग करोगे तो कर्मों के हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। तो उन्होंने लिखा कि मैंने 8 घंटा योग चालू किया, सुबह 8 से 12 और 4 से 8 शाम को, हर दिन डेली, सुबह 8 से 12 और 4 से 8। और दोपहर को कुछ माताएं थी, उनको मुरली सिखाने की, समझाने की या ट्रांसलेट करने की सेवा करता था। ये क्रम डेली चालू कर दिया और एक दिन अचानक नेवी से छुट्टी मिल गई और फिर बाबा आए और बाबा के अंग संग रहने का 3 मास मौका मिला। जिस किसी के साथ भी हिसाब किताब है उसको चुप करने की विधि क्या है? योग। बैठ के डिस्कशन करना, इसका अपना महत्व है। सोचना, पूछना, ये सब एक तरफ। सबसे पावरफुल विधि क्या है? योग। और वो भी निस्वार्थ, इसलिए नहीं कि इससे ये हो जाए। जैसे नींद आ जाए इसके लिए क्या करते हैं? नींद आ जाए उसके लिए जितने भी प्रयत्न किए जाते हैं सारे बाधा बन जाते हैं नींद आने में। नींद कब आती है? जब सारे प्रयत्न छोड़ दिए जाते हैं। किताब है अंग्रेजी में, इंग्लिश में एक, यू मस्ट रिलैक्स। ये मस्ट शब्द ही प्रॉब्लमेटिक है। ये जो मस्ट है ना, यही तो रिलैक्स होने नहीं देता। जो करने जा रहे हैं वो प्रयत्न ही बाधा है, अटेंशन का भी टेंशन हो जाता। तो नेचुरल हो। योग इसलिए नहीं कि हमें वो करना है वो करना है। योग इसलिए नहीं कि ये भाई बाबा इसकी ट्रांसफर कर दो जल्दी से जल्दी। बाबा इसकी बुद्धि का फटाफट टालक हो, आज मैं 8 घंटा योग करता हूँ। एक बहन आई थी इधर, डॉक्टर बहन, तो उसका पति बहुत असहयोगी, विघ्न डालने वाला। तो यहाँ जब आई उसने बहुत योग लगाया बाबा से, बाबा मेरे पति की बुद्धि का ताला खोल दो, ये कर दो, उसको ऐसा कर दो और उसको वैसा कर दो, उसका वैसा कर दो। यहाँ से जब पहुंची रेलवे स्टेशन, वो वहीं था, वहीं से झगड़ा चालू हो गया। ये भी कोई काम थोड़ी है। योग अपनी तरफ, झगड़ा जब आता है तब हार थोड़ी ना मानेंगे हम। हमारे साथ ज्ञान योग है, तुम अज्ञानी मूर्ख हमको सिखाते हो क्या करना है। योग, परंतु योग क्या बन जाए, नेचुरल, हमारा स्वभाव, हमारा नेचर, संस्कार बन जाए। योग कल भी कहा था, योग चालू कब होता है, बाबा के कमरे से निकलने के बाद। योग चालू कब होता है, 4:45 के बाद। योग चालू कब होता है, 7:30 के बाद, ये टाइम है। योग कब है, जब घूम रहे, चल रहे, फिर रहे, खा रहे, नहा रहे, उस समय योग। गेट, क्लास पूरी होने के बाद गेट के बाहर से चालू होता है रियल ज्ञान योग। तो योग को बढ़ाना है, योग की परसेंटेज, योग का चार्ट। एकांत में कितना देर हम बैठ सकते हैं और चुपचाप बिना कुछ किए, कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है, कुछ करूं, कुछ पढ़ूं, कुछ देखूं, किधर देखूं, किससे बात करूं। कुछ करने से ही तो गड़बड़ हुई है। स्टोरी नंबर 5, बाबा बहुत हाजिर जवाब थे। एक बार किसी भाई ने बाबा से पूछा, बाबा आप कहते हो आत्मा अंगुष्ठाकार है, उस समय अंगुष्ठाकार, वो तो बाद में एक दिन बोल दिया 63 में कि इट इज पॉइंट ऑफ लाइट, तब तक तो अंगुष्ठाकार। तो बाबा ये जो चींटी होती है उसकी आत्मा कितनी बड़ी होती है, बाबा ने कहा चींटी के अंगूठे इतनी। चींटी की आत्मा कितनी होती है, चींटी के अंगूठे कितनी। तो बाबा बहुत हाजिर जवाब थे, उसी के साथ बाबा सबको पहाड़ों पर ले जाते थे और वहां पर अपने लौकिक जीवन की बातें बताते थे और कहते थे कि जब लौकिक में दादा लेखराज अपने लौकिक बच्चों को तीर्थ स्थान पर ले जाते थे और उनके हाथों में पैसे देते थे और कहते थे जाओ जाकर दान करो, 500 रुपए की नोट, 500 रुपए की नोट, और जो पैसे बचा के लाता था उसको बाबा कहते थे ये कंजूस है। और बाबा की एक आदत थी गुप्त दान की, गंगा स्नान करते थे और स्नान करते करते अपनी हीरे की अंगूठी निकालकर पानी में डाल देते थे, किसी को पता भी ना चले, गुप्त दान, स्नान करते करते ही हीरे की अंगूठी बहा देते थे। तो एक भाई ने बाबा के जीवन के ये किस्से सुनाए हैं, तो कि बाबा बहुत हाजिर जवाब थे, कुछ भी पूछो तो तुरंत उत्तर जैसे बाबा के पास रहता ही था। सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस। एक होता है किसी ने पूछा मैं सोच के बताता हूं, एक होता है तुरंत उत्तर दे देना, तो ये एक बहुत बड़ी कला है, महारत है। तो इस सेंस को भी डेवलप करना है, कॉमन सेंस, वेरी अनकॉमन। और दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई, दान, स्वभाव कैसा हो देने का, गुप्त, वो भी इस हाथ को भी ना पता चले इस हाथ ने दिया है करके, और अपने दान का ढिंढोरा नहीं पीटना है। हॉस्पिटल में लिखा रहता है हर वार्ड के ऊपर, ये किसने दिया, डोनेटेड बाय, पहले भी सुनाया था, बिरला, बिरला पता है ना, बिरला ने शरीर छोड़ा, भगवान के पास पहुंचा, भगवान ने कहा क्या किया, उसने कहा मंदिर बनाए, क्या किए, मंदिर, किसके मंदिर बनाए, लक्ष्मी नारायण, नाम किसका दिया, बिरला टेम्पल्स। हिसाब वही पूरा हो रहा है, पुण्य, अपने अपनी सेवाओं को निस्वार्थ कर देना, निष्काम कर देना, सेवाएं करो और भूल जाओ, मदद करो और भूल जाओ, उसका हिसाब किताब नहीं लिख के रखना है, हमने इतने पुण्य किए, हमने उतने पाप किए, कि पाप ठीक है, पाप रखो तो भी ठीक है, पुण्यों का तो नहीं रखो। एक अमीर आदमी पहुंचता है स्वर्ग के द्वार पर और डिमांड करता है मुझे स्वर्ग में एंट्री चाहिए। चित्रगुप्त कहता है रुको, क्या क्या किया बताओ। वो कहता है तुमने कोई दान किया, दान आज तक तो कोई किया नहीं। फिर याद आता है, हाँ एक बार किया था, 10 रुपए दान किया था एक भिखारी को, यू कैन रीचेक। चित्रगुप्त निकालता है, हाँ है रिकॉर्ड में, 10 रुपए दान किए। तो कहते आओ, कहते एक मिनट। चित्रगुप्त अंदर इन कंसल्टेशन विथ यमराज वापस आता है, कहता ये लो तुम्हारे 10 रुपए, जाओ नर्क, गो टू हेल। 10 रुपए के दान से इधर स्वर्ग चलने आए, निकलो पतली गली से, मैं ये करता हूं, मैं याऊं करता हूं, मैं त्याऊं करता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो दान कर देना और भूल जाना, अपने आप जमा हो जाएगा पुण्य। स्टोरी नंबर
6।
लक्ष्मण भाई थे, जैसे बताया वो पहले टीचर थे, और अनुशासन के लिए उनको कुछ कुछ कहना पड़ता था स्टूडेंट के, और उनका एक फेवरेट था उल्लू के पट्टे। और जब ज्ञान में आए तो उनको लगा ये ज्ञानी के मुख से ऐसे शब्द अशोभनीय है, क्योंकि ज्ञानी के मुख से निकले हुए एक एक शब्द महावाक्य होने चाहिए। बाबा क्या करूं, पत्र लिखा कि मैं ऐसा कहता हूं उल्लू के पट्टे बच्चों को, और वो अनुशासन के लिए जरूरी है। तो बाबा का उत्तर आया, किसने कहा पट्टे नहीं कहो, कहो पर अल्लाह के पट्टे कहो, बस इतना चेंज कर दो। कहो पर क्या करो, चेंज कर दो अल्लाह के पट्टे, इतना चेंज कर दो। अध्यात्म अर्थात परिवर्तन, शब्दों में तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा है परिवर्तन। इंटेंस एफर्ट मींस ट्रांसफॉर्मेशन, छोटी छोटी चीजों को परिवर्तन कर दो, बस बहुत परिवर्तन आ जाए। छोटी छोटी चीज, तीन तीन बार चूल्हा जलाते हो, अब दो बार जलाओ, देखो क्या होता है। सुबह का नाश्ता वाला एटलीस्ट कुक्ड बंद, जूस फ्रूट्स वेजिटेबल सलाद अंकुरित ये कर दो, कैसी ऊर्जा आती है सुबह सुबह उठ के, इतना ढेर सारा नाश्ता। क्या किया रात भर, क्या मेहनत की, सोए तो थे। 3 meals a day इज एन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट। तीन तीन बार भोजन करना अर्थात शरीर पर अत्याचार करना है। क्यों बीमार है सारी मनुष्य जाति, एक ही बीमारी है, कब्जी कब्जी कब्जी, पेट पेट पेट। स्टोरी नंबर 7। बाबा के समय निर्वेर भाई अपना ब्रिजमोहन भाई कई बार यहाँ आते थे उनके पेरेंट्स के साथ, और वो आम का सीजन था जैसे अभी है, और उनको आम बहुत पसंद थे। तो एक बार टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर बैठे थे मम्मा बाबा और उनकी माता जी, ब्रिजमोहन भाई सब बैठे थे, तो किसी का ध्यान नहीं था। तो ब्रिजमोहन भाई की माता जी ने टेबल के नीचे से एक आम ब्रिजमोहन भाई को दे दिया, क्योंकि बेटे को आम पसंद है। अपना आम सबको आप अपने मिले है, फिर भी माँ होती है ना, मेरा भी मेरे बेटे को मिल जाए। तो बाबा ने देख लिया, और जब भोजन पूरा हुआ तो लच्छू बहन से कहा, लच्छू दादी से कहा, लच्छू बहन जाओ आम की वो जो टोकरी रखी है ना वो लेके आओ, और फिर ब्रिजमोहन भाई को कहा ये लीजिए आम। तो ब्रिजमोहन भाई को पता चल गया कि बाबा ने शायद देख लिया था, और कहा कि बाबा ऐसा प्रेम का सागर था कि जिसने हमें अपने प्रेम से बांध लिया। माँ को लेके आए थे, वापस जाना था, माँ को बाबा ने पूछा कैसे जाने वाले हो, तो माँ कहती है कि ब्रिजमोहन ने बस की है, बस से जाएंगे। बाबा ने कहा बस से नहीं, बाबा ने तुम्हारे लिए टैक्सी की है, टैक्सी बाहर वेट कर रही है। तो ब्रिजमोहन भाई कहते हैं कैसे हम भूले, बाबा को कैसे पता चल जाता है, और बाबा कैसे जान जाते हैं आत्माओं के अंदर के भाव, और इतना वो प्रेम, तो उस प्रेम ने ही हमें क्या कर दिया, गुलाम बना दिया। जैसे प्रेम में वो शक्ति है, बाबा ने किसी को कहा नहीं तुम ये करो तुम वो करो, खुद ही किया और कारवा जुड़ता गया। किसी को ऑर्डर नहीं दिए तुम ऐसा करो तुम वैसा करो, एक ही चीज दी, कौन सी, मॉरल ऑफ द स्टोरी, प्यार बांटो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आत्मा की सबसे गहरी प्यास प्रेम की प्यास है, उसको वो दे दो फिर वो समर्पित है, अगर उसको वो ना दियो तो कुछ भी नहीं। जैसे एक पति कंप्लेंट करती है संत के पास कि मेरा पति जब से युद्ध से आया है, सैनिक था, मेरे से ढंग से बातें नहीं करता है, ठीक से व्यवहार नहीं करता है, चुप रहता है, उत्तर पूछती हो तो बताते नहीं है, क्या करूं मैं। वो साधु कहता है कि बहुत बड़ा काम है, एक दवाई है जिससे ये हो सकता है, अगर वो दवाई तुम उसको पिला दो तो उसकी बीमारी या जो भी हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। वो कहती है मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो कहती है जंगल जाओ, वहाँ एक शेर है और शेर की जो मूंछ है ना उसका एक बाल लेके आओ। कहती बाप रे ये कैसे होगा। वो जाती है, दूर से शेर देखती, दहाड़ लगाते वो भाग के आ जाती है शेर जंगल से, परंतु उसको पति वशीकरण दवाई तो बनानी है ना। पति वशीकरण मंत्र होते हैं, बहुत ज्यादा डिमांड है उसकी, साधु संतों के पास महिलाएं इसीलिए तो आती है, पति वशीकरण मंत्र हमारी मुट्ठी में हो। तो दूसरे दिन जाती है, फिर से दहाड़ लगाता है शेर, पर वो छुप जाती है, पर जाती नहीं, वहीं रुकती है। तीसरे दिन फिर जाती है, फिर दहाड़ लगाता है शेर। रोज देखती है शेर आ रहा है, पानी पी रहा है। धीरे धीरे शेर को भी उसकी उपस्थिति का पता चलने लगता है कि वो है। फिर शेर दहाड़ लगाना बंद करता है, फिर धीरे धीरे और नज़दीक जाती है, फिर और नज़दीक जाती है। फिर एक दो तीन महीने में शेर और उसकी दोस्ती हो जाती है। और वो एक दिन उसका, क्योंकि शेर से ज़्यादा महत्वपूर्ण पति है, उसका बाल लेके आती है, भाग भाग के उस संत के पास पहुँचती है, जल्दी बनाओ दवाई। संत कहता है, कौन सी दवाई, कैसी दवाई, ऐसी कोई दवाई नहीं होती है, तो आपने ही तो कहा था दवाई यही है। जैसे शेर को वश में कर दिया ना प्रेम से, अब वही मंत्र इधर काम करो, प्यार प्यार से, प्यार प्यार से, प्यार प्यार से उसको वश में कर लो। स्टोरी नंबर वन क्या थी? अगरबत्ती जेब में, आज से ले लेना अगरबत्ती, ऑफिस जाते समय जो भाई है, ऑफिस जाते समय अगरबत्ती जेब में, जैसी जरूरत पड़ी जला के देखते रहो ये अगरबत्ती क्या कर रही है, खुशबू फैला रही है, या ऐसे ही अगरबत्ती को देखो, केवल ऐसे ही देखो। बाबा कहते हैं ना, जाओ और फूलों के सामने बैठ के देखो इनमें से मैं कौन सा फूल हूँ। वैसे अगरबत्ती को केवल देखने मात्र से संकल्प चलेंगे कि इससे मैं क्या सीखता। स्टोरी नंबर टू। तो आज सारे दिन भर कैसे चलेंगे? ऐसे ऐसे मैं कौन हूँ, चतुर्भुज, थोड़ा बाजू हटना, जगह ज्यादा चाहिए, चतुर्भुज आ रहे हैं। तो सब संस्कार हमारे अंदर, ये नहीं कहना ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरा काम नहीं। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सब कुछ कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टोरी नंबर थ्री। पेट में जो भी जाता है वो आखिर ठंडा ही होना है उसको। अब धीरे धीरे यात्रा चालू करनी है कुक्ड के जगत से अनकुक्ड के जगत की। बीच का जो पीरियड है, ट्रांजिशन फेज, संगम युग, ये थोड़ा लंबा हो सकता है, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पाँच साल, दस साल भी हो सकता है। पर धीरे धीरे ये यात्रा ही हेल्थ की यात्रा है, स्वास्थ्य की यात्रा है। नेक्स्ट स्टोरी। हिसाब किताब चुप तू, पर आठ घंटा योग करना मासी का घर नहीं है, वो भी बैठ कर नेचुरल योग की स्थिति बनानी है। सारे हिसाब किताब योग से ही चुप तू हो, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति आ जाए, पहला काम योग, ज्ञान चिंतन बाद में, परिस्थिति चिंतन बाद में। नेक्स्ट स्टोरी। हाजिर जवाब, तुरंत जवाब। तो बाबा हाजिर जवाब थे, सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग था। तुरंत किसको क्या उत्तर देना, सोच के देना, ये तो बहुत आसान है, तुरंत। नेक्स्ट, वो दान की भी बात बताई थी यहाँ पर, दान, दान वाली बात भी थी। उसके बाद में शब्दों को बदलना है, ज्ञानियों के शब्द जो है अच्छे हो जाने चाहिए, थोड़े सुनने के लिए अच्छे होना चाहिए। एक उदाहरण, एक कहते हैं रिचार्ज करना, एक रिचार्ज मारना, कौन सा अच्छा है? करना अच्छा है ना, डिग्निफाइड, उसको चेंज करो। नेक्स्ट, आम का क्या करना है? खाना है, वैसे आम का सीजन चल रहा है, खाओ, देना भी है खाओ भी। आम का सीजन आता है, सभी लोग आम खाते हैं और सबको आम कितना पसंद आता है। एक दिन आम का सीजन चला जाता है, कोई भी आम मिस नहीं करता, जो प्राकृतिक नेचुरल चीजें होती है वो मिस नहीं की जाती है। रोज गुलाब जामुन खाओ ये चार महीना, चार महीने के बाद गुलाब जामुन बंद, फिर ढूंढना चालू करते गुलाब जामुन कहाँ है। जो प्राकृतिक है और जो पका हुआ है उसमें एडिक्शन है, जो प्राकृतिक है उसमें कोई एडिक्शन नहीं है। आम का सीजन चला जाता है, कोई भी मिस नहीं करता है, इतना सहज। फिर आम का सीजन आता है, फिर सब खाने लग, जब चाहे लो, तब चाहे छोड़ो, ये है प्रकृति। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राह पे चलता चल, प्यार दीरों को देता है, अशकों को दामन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है।
मधु मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है,
जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है,
मधुबन खुशबू देता है।
खुशबू देता है।